इस वक्त मेरा यहाँ से जाना ही ठीक है। मैं तो पहले ही चला गया होता, लेकिन तुमने और तुम्हारे दादू ने मुझे जाने नहीं दिया। अगर पहले चला गया होता तो अभी ये नहीं हो रहा होता। खैर छोड़ो, जो होना था हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। मानव ने जबरन उससे अपना हाथ छुड़ाया और इस बार नित्या चाहकर भी उसे रोक नहीं सकी। आंखों में नमी लिए मुंह बिचकाए उसे खुद से दूर जाते देखती रही। अच्छा दादाजी, मैं चलता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, मेरे वजह से आपके घर का माहौल बिगड़ा। जाने अनजाने मैं इस कड़वाहट और नाराज़गी की वजह बन गया, जबकि मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं था। मानव ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी, जबकि उसकी तो कोई गलती थी भी नहीं। दादाजी ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ा। अरे पुत्र, ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तुम ये सब मत करो और आराम से बैठो, अभी मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। सॉरी दादाजी, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता। मैं तो अंदर आना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपने इतने प्यार से बोला कि मैं आपकी बात काटकर आपका अपमान नहीं कर सका। सिर्फ आपका मान रखते हुए मैं इतनी देर रुक भी गया। अब मुझे चलना चाहिए, घर पर आई मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वैसे भी मेरे यहाँ होने से आपके घर का माहौल बिगड़ रहा है, रिश्तों में दूरियाँ आ रही हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। आप समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ कभी आया ही नहीं। सर से जो भी नाराज़गी है उसे यहीं छोड़ दीजिएगा। उनकी अपनी सोच अपनी वजह है, जिसे हम बदल नहीं सकते। इसलिए आप बेवजह उनसे बहस करके मेरे लिए उनकी नफ़रत को और मत बढ़ाइएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आपने इतना प्यार और अपनापन दिया उसके लिए शुक्रिया। मानव ने उनके हाथ को हटाया और किसी को आगे कुछ बोलने का मौका ना देते हुए तेज़ कदमों से गेट की तरफ बढ़ गया। डैड, आप इस सड़क छाप लड़के को उठाकर अपने घर ले आए, आखिर आप चाहते क्या हैं? मिस्टर शेरगिल गुस्से और नाराज़गी से चीखे। उन्हें मानव का यहाँ आना नागवार गुजरा था। दादाजी भी खासे नाराज़ नजर आए और उन्हीं के अंदाज़ में जवाब दिया, मैं नहीं, वो मुझे घर तक छोड़ने आया था। गाड़ी ख़राब हो गई थी हमारी, ड्राइवर मैकेनिक लाने गया सो वापस नहीं आया। एक घंटे सड़क पर खड़े रहे, तब ये बच्चा मदद के लिए सामने आया और सुरक्षित हमें यहाँ तक छोड़कर गया। ओह, तो अब उसने आपको भी अपनी अच्छाई के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और आपने मान भी लिया कि वो सच में इतना नेक और शरीफ है। क्या लगा आपको कि उसने इंसानियत के नाते आपकी मदद की? नहीं, उसने एक चाल चली। मैंने उसे नित्या से मिलने नहीं दिया, इसलिए उसने आपको जरिया बनाया और इस घर में घुसने में कामयाब भी हो गया। उसने बेवकूफ बनाया है आपको। उसकी नज़र नित्या और इस घर पर है, लेकिन जानता है कि मेरे रहते वो इतनी आसानी से अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए अब ये सब चालें चल रहा है ताकि आपको इम्प्रेस करके अपने तरफ कर सके और उसका काम आसान हो जाए। मानव के लिए उनके दिल में बसी नफरत कड़वाहट देखकर दादाजी स्तब्ध थे और नित्या फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। मानव पर लगाए ये इल्ज़ाम उससे बर्दाश्त नहीं हुए। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक वहाँ मानव की सख्त आवाज़ गूंजी और वहाँ मौजूद तीनों लोग बुरी तरह चौंक गए। बस, अब बस कर दीजिए। तीनों लोग झटके से पलटे। गेट के पास खड़े मानव का चेहरा जल रहा था, आंखों के महीन डोरे गुलाबी रंग में रंग गए थे और उसने अपनी मुट्ठियों को भींचा हुआ था। शायद अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो उससे हुआ नहीं। और उसने मिस्टर शेरगिल को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, इतना गिरा हुआ और घटिया आदमी नहीं हूँ मैं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। ना तो मेरी नज़र आपकी बेटी पर और ना ही आपके इस घर और प्रॉपर्टी पर, इसलिए आप अपनी घटिया सोच को मुझ पर थोपने की कोशिश मत कीजिए। ना मैं ऐसा हूँ और ना कभी बन सकता। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जब नित्या मुझसे मिली मैं नहीं जानता था उसके बारे में कुछ। मैंने किसी गलत इंटेंशन से उसे अपने घर में पना नहीं दी थी। वो एक लड़की है, उसके पास रहने के लिए कोई सेफ जगह नहीं थी और मैं नहीं चाहता था कि वो दोबारा किसी की बुरी नीयत का शिकार बने। एक बार तो मैंने बचा लिया, लेकिन दोबारा ऐसा होता और फिर से कोई उसे बचाने आता ये ज़रूरी नहीं था। इसलिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे अपने साथ रहने की इजाज़त दी। जिस दिन आप उसे वापस लेकर आए मैंने दोबारा उससे कॉन्टैक्ट तक करने की कोशिश नहीं की, ना उससे दोबारा मिला और ना बात की। कुछ दिन पहले आपकी बेटी खुद आई थी हमसे मिलने, तब भी मैंने उसे बार बार बस यही समझाया कि दोबारा वहाँ ना आए। आपको नहीं पसंद तो मुझसे या मेरी आई से कोई रिश्ता ना रखे, हमसे दूर चली जाए, यही उसके और हमारे लिए सही है। क्योंकि सच तो यही है कि हम दोनों तो अलग अलग दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। मेरी औकात नहीं कि मैं उसके सामने भी खड़ा रह सकूं और मुझे मेरी हकीकत बहुत अच्छे से मालूम है। रही बात मेरे यहाँ आने की, तो आज मेरा यहाँ आना सिर्फ एक इत्तफाक था। मैंने दादाजी को सड़क पर खड़े होकर परेशान होते देखा, उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मैं मना नहीं कर सका और उन्हें छोड़ने आ गया। मुझे नहीं पता था कि ये आपके पिता हैं और मैं यहाँ आपके घर पहुँच जाऊँगा। अगर पता होता तो मैं इन्हें बाहर ही छोड़कर चला जाता। वो कितना ही कहते लेकिन मैं कभी उस आदमी के घर में कदम नहीं रखता जो हर बार सिर्फ मुझे ह्यूमिलिएट करता है। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा मायने रखती है और किसी भी कीमत पर मैं उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ आप मुझे सड़क की धूल से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, आपके सामने मेरी कोई औकात ही नहीं, लेकिन एक बात आज मैं भी आपको बता दूं कि भले ही मेरे पास आपके जितने पैसे ना हों लेकिन इज्जत मेरी भी है और मैंने अब तक की अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि मुझे किसी के आगे सर झुकाना पड़े या किसी को मेरी आई की परवरिश, उनके दिए संस्कारों पर उंगली उठाने का मौका मिले। आप बड़े हैं मुझसे, लेकिन ये हक आपको भी नहीं कि आप मुझ पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर मुझे जलील करें। हमेशा चुप चुप और शांत रहने वाले मानव ने जब मुंह खोला तो सबकी बोलती बंद कर दी। मिस्टर शेरगिल तक को चुप करवा दिया, लेकिन वो यहीं नहीं रुका। उसने गहरी सांस छोड़ी और उनकी आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, आपका डर मैं समझता हूँ। आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो चंद पैसों के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जिन्हें सिर्फ अपना फायदा नजर आता है, और अक्सर ऐसी मेंटालिटी वाले लड़कों का शिकार अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाली मासूम लड़कियां होती हैं। लेकिन आपको भी ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर लड़का मतलबी और धोखेबाज नहीं होता। जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही हों। आपको कोई हक नहीं है बिना कुछ जाने किसी को ऐसे जज करने और उस पर ऐसे इल्जाम लगाकर उसे जलील करने का। मैं जानता हूँ आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, शायद आपके पास इसकी वजह भी होगी, सही या गलत, लेकिन वजह होगी। इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, और सच पूछिए तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको जो सोचना है सोचिए, मेरे तरफ से आप बिल्कुल आजाद हैं। बस इतना याद रखिएगा कि अगर आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर वार किया, मेरी आई की परवरिश पर सवाल उठाया, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मानव ने आंखों से उन्हें वार्निंग दी। मिस्टर शेरगिल ने गुस्से में जबड़े भींच लिए। मानव ने उन पर से निगाहें हटाई और दादाजी को देखते ही उसके कठोर भाव कोमल हो गए। मैं ये कहने वापस आया था कि आपके पैर में चोट लगी है, तो डॉक्टर से एक बार चेक करवा लीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो या जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। मानव ने सर झुकाकर उनसे माफी मांगी। सरसरी निगाहें नित्या पर डाली। उसकी नम आंखें देखकर दिल अजीब सा हो गया, लेकिन अब वो बिना एक पल रुके निगाहें फेरते हुए सीधे बाहर निकल गया।
डैड, आप बहुत बुरे हैं। आप हर बार मानव के इंसल्ट करते हैं। वो इतना अच्छा है। मैंने लास्ट टाइम इतनी मुश्किल से उसे मनाया था, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। वो फिर से मुझसे गुस्सा होकर चला गया। अब वो फिर से मुझसे बात नहीं करेगा। आई हेट यू डैड। अब मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। नित्या की नाजुक दिल को गहरी चोट लगी थी। वो बहुत ज्यादा हर्ट थी। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें फिसली, जिसे उसने बड़ी ही बेरहमी से अपनी हथेलियों से रगड़कर पोंछा। नाराजगी भरी नजरें मिस्टर शेरगिल पर डाली और रोते हुए ऊपर भाग गईं। अब वहां बस मिस्टर शेरगिल और दादाजी ही रह गए थे, और दोनों का गुस्सा जैसे सारी लिमिट्स क्रॉस करने को तैयार था। टू बी कंटिन्यूड।